बाथरूम का दरवाज़ा क्लिक से खुला। हल्की सी भाप बाहर फैली और उसके साथ ही विश्वनाथ बाहर आया, सिर्फ पजामा पहने हुए। ऊपर की टी शर्ट उसके हाथ में नहीं थी, वो अभी भी अलमारी में फोल्डेड पड़ी थी, बाथरूम तक भी नहीं लाई गई। उसके सख्त त्वचा पर पानी की महीन बूंदें चमक रही थीं। गर्दन से लेकर छाती तक भाप की नमी जमी हुई थी और कंधों से टपकती धीमी धीमी बूंदें कमरे की पीली रोशनी में खतरनाक खूबसूरत लग रही थीं। श्यामली एकदम जड़ हो गई। उसने जल्दी से अपने हाथ सामने बांध लिए, मानो अचानक उसकी पूरी सांसें उसकी ही पकड़ में आ गई हों। वो चाहती नहीं थी ऐसे खड़ा होना, लेकिन उसका खड़ा होना ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। विश्वनाथ बाहर आया और उसकी नज़र बस एक सेकंड, एक ही पल श्यामली पर पड़ी। उसके बाल खुले थे, थोड़े बिखरे हुए और हवा में हल्के से हिल रहे थे। चेहरा थोड़ा लाल और आंखें अनजानी बेचैनी में झुकी हुईं। वो पल इतना भारी था कि कमरे की दीवारें भी धीमी लगने लगीं। लेकिन विश्वनाथ ने तुरंत अपनी नज़रें मोड़ लीं, जैसे खुद को किसी आग से बचा रहा हो। वो अलमारी की तरफ बढ़ा। पैरों के नीचे गीली आहट थी और कमरे में बस एक ही आवाज़, विश्वनाथ की भारी नियंत्रित सांसें, जो बाथरूम से निकलकर भी अभी तक शांत नहीं हुई थीं। श्यामली ने देखा, वो पजामा थोड़ा नीचे बैठा था और विश्वनाथ का शरीर पूरी तरह से खुला हुआ था। कंधे चौड़े, पीठ पर हल्की तनाव की रेखाएं और छाती पर पानी की बूंदें, जो धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही थीं। श्यामली की उंगलियां खुद बखुद कस गईं, गला सूख गया, दिल जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह धड़क रहा था। वो बोलना चाहती थी, मोहिन के बारे में, सच के बारे में, उस आग के बारे में, उस रात के बारे में, लेकिन आवाज जैसे कमरे के दरवाजे के बाहर रह गई हो। विश्वनाथ ने अलमारी खोली, एक नज़र अंदर डाली, टी शर्ट निकालनी ही थी कि आवाज आई, फोन बजा। वो रुका, चेहरा फिर से गंभीर ठंडा, मानो अभी अभी कमरे की सारी गर्माहट उसकी सांसों में ही गुम हो गई हो। फोन की स्क्रीन देखी, ऑफिस का कॉल था। उसने एक सेकंड को नजरें बंद की, जैसे वो जानता था ये कॉल उसका मूड उस सबसे दूर ले जाएगी जो कमरे में पिघल रहा था। वो मुड़ा और लगभग किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ गया, एक पैर फैलाकर, एक हाथ किनारे पर रखकर और गले से गहरी आवाज में, हाँ बोलो। उसका टोन ऐसा था जैसे वो सिर्फ आदेश देता है, सवाल नहीं सुनता। श्यामली दूर खड़ी रही, हाथ अब भी बांधे, सीना ऊपर नीचे होता हुआ, आंखें उसी की ओर बार बार खिंचती हुईं। उसे बात करनी थी, उस रात की सच्चाई, उस बच्चे की, उस आग की जिसमें मोहिनी गई या भागी। लेकिन विश्वनाथ फोन पर था, गंभीर ठंडा और अजीब तरीके से दूर। श्यामली इंतजार करती रही, एक मिनट, दो मिनट, पांच। फिर अचानक विश्वनाथ ने बात बीच में रोककर धीमे से अपना सिर मोड़ा और श्यामली की तरफ देखा। वो नज़र ऐसी थी कि कमरे की हवा तक कांप गई। श्यामली वहीं खड़ी थी, साधारण शांत पर इतनी खूबसूरती के साथ कि उसकी सादगी भी खंजर बन रही थी। उसके गीले होंठ, हल्का लाल चेहरा और बाल हवा में उड़ते हुए। विश्वनाथ का ध्यान फोन से हटकर धीरे धीरे श्यामली की ओर खिंच रहा था, जैसे कोई चुंबक जिसे खुद पता नहीं कि वो किस धातु को बुला रहा है। लेकिन तभी फोन पर कोई बात तेजी से कही गई। विश्वनाथ ने पलकें झपकाईं, जैसे उसने खुद को पकड़ा हो किसी खतरनाक नज़र से जो वो खुद भी नहीं देना चाहता था। उसने आंखें घुमाई, सिर झटका और खुद से बेहद धीमे में कहा, ये कहाँ ध्यान दे रहा है। उसने पल भर को अपनी आंखें जमीन पर गड़ाई, मानो वो अपनी ही नज़र से खुद को रोक रहा हो। ठीक इसी खतरनाक धीमी जलती हुई हवा में रुक जाता है। विश्वनाथ ने फोन कट किया एक भारी टक के साथ। कमरे में अब सिर्फ उसकी सांसें थीं और श्यामली की घबराई हुई धड़कनें। वो बिना उसकी तरफ देखे सीधे अलमारी की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला, एक के बाद एक फाइलें सरकाईं, जैसे किसी जरूरी चीज की तलाश में हो। लेकिन उसकी हर हरकत बेचैन, तेज और झुंझलाहट से भरी थी। श्यामली ने मौका देखा, धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ी, पल्लू ठीक से पकड़ा, सांस रोकी और उसके करीब जाकर धीरे से कहा, मुझे आपसे बात करनी थी। विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फाइलें पलटता रहा, पर उसकी पीठ की मांसपेशियां अचानक तन गईं, जैसे उसकी आवाज ने उसकी त्वचा को छू लिया हो। श्यामली फिर पास आई, विश्वनाथ जी बात जरूरी है। इस बार विश्वनाथ ने हल्की सी नजर घुमाई, बस एक सेकंड के लिए, लेकिन वही काफी था कमरे की हवा का तापमान गिराने के लिए। वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार विश्वनाथ फाइलें छोड़कर अचानक पलटा। श्यामली चौंक गई, उसका पल्लू कांप गया। उससे पहले कि वो पीछे हटती, विश्वनाथ ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे कंधों से पकड़ लिया और झटके से दीवार से लगा दिया। दीवार पर उसकी पीठ धड़ाम से लगी, हवा उसके बदन से निकल गई और विश्वनाथ उसके इतने करीब था कि उसकी सांसें सीधे श्यामली के चेहरे पर गिर रही थी। एक पल, एक लंबा खतरनाक पल। विश्वनाथ की आंखें गुस्से से नहीं, किसी और ही सख्त गहरे एहसास से भरी थी। वो गरजने जैसा फुसफुसाया, चाहा क्या था तुमने? श्यामली की आंखें फैल गईं। मैं क्या? विश्वनाथ उसका चेहरा बस इंचों की दूरी से घूर रहा था, इतना पास कि उसकी आंखों में अपनी ही परछाई दिखने लगी थी। क्यों खिंच रही हो मेरा ध्यान? क्यों अट्रैक्ट कर रही हो मुझे? उसकी आवाज भारी थी, कहीं गुस्सा, कहीं दर्द और कहीं एक काला सच जो खुद वो भी मानना नहीं चाहता था। श्यामली की सांस रुक गई, वो डर गई, पर फिर भी उसकी आवाज धीमी, मासूम, कांपती हुई। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। विश्वनाथ उसकी ओर करीब आ गया, उनके चेहरे के बीच एक बाल जितनी दूरी भी नहीं बची। गलतफहमी? उसने धीमे खतरनाक स्वर में कहा। या तुम ही? वो वाक्य बीच में रोक गया, जैसे खुद को पकड़ लिया हो, जैसे वो मान भी ले तो कुछ टूट जाएगा। श्यामली की उंगलियां उसकी पकड़ में दब रही थीं, चेहरा डर और मासूमियत से भर गया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, आप गलत समझ रहे हैं। विश्वनाथ की सांस उसकी गर्दन छू रही थी। कमरे में सिर्फ वही दो थे और वो काली बिजली जैसी खामोशी जो हर टकराहट से पहले जन्म लेती है। एक पल को ऐसा लगा कि वो और करीब आ जाएगा या शायद खुद को खो देगा, लेकिन अचानक उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक झटके से पीछे हट गया। श्यामली दीवार से ही संभली, चेहरा लाल, सांसें तेज, आंखें बड़ी बड़ी। विश्वनाथ उसकी तरफ एक आखिरी खतरनाक नजर डालकर मुड़ गया। उस अधूरी खामोशी में जिसमें सब कहा जाता है पर शब्द कोई नहीं बोलता।